हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। युग अभी भी मानव के साथ हॉस्पिटल में बैठकर कृषा के होश में आने का इंतजार कर रहा था। उसने हरलीन से बात करके तीसरे पड़ाव को पार करने की बात बता दी थी। वहाँ पर आदित्य सिंघानिया और अमृता के होने से उसका काम आसान हो गया था। युग के कॉल कट होते ही मानव ने खुश होकर कहा, अरे वाह, तुमने तीसरा पड़ाव पार कर लिया। तुमसे ज्यादा मुझे उस दिन का इंतजार है जब तुम माफिया किंग बनोगे और इस लड़की को छोड़ दोगे। और आपसे किसने कहा कि माफिया किंग बनने के बाद में कृष को छोड़ दूंगा? मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों हमेशा साथ रहने वाले हैं। दादू की तरह किसी गलतफहमी में मत रहिएगा मामू, युग ने सीधे सीधे जवाब दिया। युग ने जिस तरह से जवाब दिया था उसे सुनकर मानव ने उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखा, पर उसका युग पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उठकर कृषा के पास गया। उसने देखा कि कृषा को होश आ रहा था। कृषा ने धीरे धीरे आंखें खोली। वो अपने आसपास के माहौल को समझने की कोशिश कर रही थी कि उसकी नज़र युग पर गई, तो उसने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। युग ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हम मुंबई वापस आ गए हैं और इस वक्त मामू के हॉस्पिटल में हैं। तुम्हें होश आ गया है तो हम वापस अपने घर पर चलेंगे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने सक्सेसफुली तीसरा पड़ाव भी पार कर लिया है। युग की बात सुनकर कृषा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वो उठने को हुई तो उसे अपने पैर में तेज दर्द महसूस हुआ। कृषा वापस से लेट गई। युग ने कृषा के पैर की तरफ देखा और फिर उसे सब बताते हुए कहा, माइन की चिंगारी से तुम्हारा पैर जल गया था। चिंता मत करो, एक हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मामू अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे तो और भी जल्दी ठीक हो जाएगा और कोई निशान भी नहीं रहेगा। कृषा ने युग की बात पर हामी भरी और फिर मानव की तरफ देखा। मानव ने उसे देखकर अपनी नज़रें घुमा लीं। कृषा ने फिर से युग की तरफ देखकर कहा, लगता है बाकी सबकी तरह तुम्हारे मामू भी मुझसे नाराज़ है, पर अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मेरे साथ हो, मुझे और कोई नहीं चाहिए। कृषा का जवाब सुनकर मानव उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे तो वहीं युग के चेहरे पर स्माइल थी। उसने कृषा को अपनी बाहों में उठाया और फिर मानव की तरफ देखकर कहा, सुना आपने मामू, इसे मेरे अलावा और किसी की ज़रूरत नहीं है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इससे नाराज हो या खुश। अपनी बात कहकर युग कृषा को लेकर वहाँ से बाहर आ गया। बाहर लंबी चौड़ी सिक्योरिटी थी और वहाँ उनमें मलिक भी था। मलिक ने कृषा के बाहर आते ही उससे पूछा, आप ठीक तो है ना? कृषा मलिक की बात का जवाब देती उससे पहले युग बीच में बोल पड़ा, मलिक, ये मेरी वाइफ है, इसलिए इसकी फ़िक्र करने के लिए मैं हूँ। तुम्हारा जो काम है तुम वो करो। गाड़ी निकालो, हमें जल्द से जल्द मेरे घर पहुँचना है। मलिक ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और फिर गाड़ी की तरफ चला गया। युग भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। जैसे जैसे वो लोग चल रहे थे उनके पीछे सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ रहे थे। युग कृषा को लेकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। उनके गार्ड्स अपनी गाड़ियों में बैठकर युग की गाड़ी के आगे पीछे हो गए थे। कुछ देर में युग कृषा के साथ अपने घर पहुंच चुका था। घर आते ही वो उसे अपने रूम में लेकर गया और बेड पर लेटा दिया। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, कृषा को लिटाने के बाद युग ने कहा और फिर वहाँ से जाने को हुआ तभी कृषा ने उसका हाथ पकड़ लिया। कृषा युग को रोकने के लिए कहा, तुमने मुझे बताया नहीं युग कि वो कार्ड किस काम का है? मुझे किसी भी पड़ाव पर मौजूद चीज का मतलब समझ नहीं आया। तुम्हारे पास सभी चीजों से ज्यादा पैसे होंगे, फिर उन्हें ही हासिल करने के बाद तुम माफिया किंग कैसे बनोगे? कृषा को पहले इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर जब से वो इन सब को खुद से फेस करने लगी थी उसे इन सब में दिलचस्पी भी होने लगी थी। युग कृषा के पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, अच्छा लग रहा है कि तुम भी इन सब में इंटरेस्ट ले रही हो। चलो, पूछ ही रही हो तो बता देता हूँ। माफिया किंग बनने के लिए कुछ जरूरी असेट्स का होना जरूरी है जो सातों पड़ावों में छुपी हुई हैं। ये कार्ड कोई आम कार्ड नहीं है, ये किंग का कार्ड है और जिसके पास ये कार्ड होता है वही माफिया किंग बनता है। इसके पीछे एक स्पेशल पासवर्ड लिखा हुआ है जो कि किसी सेफ का है। अब वो सेफ कहाँ मौजूद है ये हमें किसी और पड़ाव में जाकर पता चलेगा। युग ने कृषा को सब कुछ समझा दिया था। कृषा ने उसकी बात पर हामी भरी। फिर उसने युग की तरफ देखा। वो चेहरे से थका हुआ लग रहा था क्योंकि जब से कृषा बेहोश हुई थी तब से उसने एक मिनट के लिए भी रेस्ट नहीं किया था। कृषा ने अपना हाथ युग के बालों में फिराते हुए उसके बाल सही करने लगी। फिर वो धीरे से बोली, अच्छा लगता है जब तुम मेरे साथ रहते हो फिर डर भी लगने लगता है। तुम्हारी दुनिया अलग है, मैं अब तक इस दुनिया का हिस्सा नहीं बनी हूँ। कहीं कोई हमें दूर तो नहीं कर देगा ना युग? मैं डेविल हूँ क्रिश, मैंने दूसरों को ये हक नहीं दिया है कि वो मुझसे मेरी खुशियाँ छीन सकें। एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें कोई मुझसे दूर ले भी जाएगा ना, तो उसे मार कर तुम्हें वापस अपने पास लेकर आऊँगा और इतनी बुरी मौत दूंगा कि उसे अपनी जिंदगी पर अफसोस होगा। बोलते हुए युग की निगाहें सर्द होने लगीं। उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि कृषा के दूर जाने का ख्याल ही उसे तकलीफ दे रहा था। युग को शांत करने के लिए कृषा उसके पास आई और उसके होठों पर हल्के हल्के किस करने लगी। युग एग्रेसिव हो रहा था क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था। कृषा उसकी पीठ सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। युग और कृषा एक दूसरे में बिजी थे तभी युग का मोबाइल रिंग हुआ। उसमें किसी का मेल आया था। युग ने चेक किया तो वो रूहान के लॉयर की तरफ से आया था जिन्होंने युग के खिलाफ केस फाइल कर दिया था। युग और कृषा के केस की हियरिंग परसों होने वाली थी इसीलिए उससे जुड़ा हुआ मेल उसे मिला था। मेल को देखने के बाद युग ने कृषा की तरफ देखा और फिर ईविल स्माइल करते हुए कहा, लगता है कुछ लोगों का जीने से मन भर गया है और वो मौत को अपने करीब बुला रहे हैं। युग का इशारा इस वक्त रूहान खुराना की तरफ था जबकि कृषा उसकी तरफ सवालिया नजरों से देख रही थी। रूहान ने युग को वो नोटिस भिजवाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी जिसकी सजा उसे जल्द ही मिलने वाली भी थी।